ओम शांति, ओम शांति। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना अंतर है, बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न रूप से समझाते हैं। भक्ति मार्ग में हम भगवान से बहुत कुछ मांगते थे, धन दो, बच्चा दो, नौकरी दो, मकान दो, न जाने क्या क्या मांगते थे। तो वस्तुएं भी मांगते थे, और यहाँ ज्ञान मार्ग में हम ये सब नहीं मांगते हैं। और ही हम बाबा को धन्यवाद करते हैं, बाबा आपने बहुत कुछ दिया है, धन्यवाद। लेकिन आज बाबा ने कहा, ये धन्यवाद भी क्यों करते हो, ये तो मेरा ड्रामा में पार्ट है, तुमको मुझे देना ही है, तो इसीलिए धन्यवाद भी नहीं करो। तो आज बाबा ने कहा, ये भी नहीं करो। फिर बाबा से और क्या मांगते थे, गुण मांगते थे, शांति दो, फिर शक्ति दो, हाँ गुण शक्ति मांगते थे। तो बाबा कहते हैं, वो भी मांगने की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो तुम्हारा अधिकार है, तुम बाबा से शक्ति खींचो, गुण खींचो, वो तो सागर है, सागर तो देने लिए तुला हुआ है, तो उनसे केवल लेना है, तो मांगना थोड़ी है। तो गुण भी नहीं मांगो, लेकिन अधिकारी बन करके बाबा की याद से वो धारण करो। फिर तीसरा क्या मांगते थे, माफी मांगते थे ना, कोई भी गलती की माफी मांगी, बाबा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। कई बार आते हैं भाई बहने, आते हैं कहते हैं, मैंने जीवन में बहुत भूले किए, वो अब मैं भूल नहीं पाता हूं। तो हम कहते, कोई बात नहीं, बाबा को पत्र लिखो और बाबा के पत्र पेटी जो है बाबा की झोपड़ी में, वहां पर बाबा को दे दो, और फिर अंदर में प्रतिज्ञा करो कि दोबारा नहीं करेंगे। केवल माफी मांगने से तो वो तो माफ थोड़ी होगा, वो तो कर्म का फल मिलेगा, लेकिन हल्का हो जाएगा, क्योंकि बाबा को सच बताया। परंतु हे भगवान माफ करो, माफ करो, फिर जाके भूले करना, माफ करो, माफ करो, तो भगवान तो ये कहेंगे नहीं, ये तो कर्मों का बोझ चढ़ा रहे हो, माफ करो, माफ करो, ये मांगो नहीं, लेकिन प्रतिज्ञा करो कि आगे नहीं करेंगे। तो बाबा भिन्न भिन्न रूप से हमें समझाते हैं। तो आज तो बाबा ने कहा, कुछ भी मांगो नहीं, शुक्रिया भी नहीं करो, बस बाबा अपना कर्तव्य निभा रहे। लेकिन क्या हम नहीं करेंगे शुक्रिया बाबा को? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये तो बाबा का निरहंकारीपना है। जब साकार में बाबा मुरली में आते थे, क्लास में आते थे, तो कई बच्चे खड़े हो जाते थे, बाबा के सामने खड़े हो जाते थे, तो बाबा कहते थे, नहीं बच्चे खड़े नहीं हो, बाबा ही खड़े होकर के झुक कर अपने बच्चों को नमस्ते करते थे। बाबा बच्चों को कभी नहीं कहते थे खड़े हो जाओ। स्कूल में जब टीचर आता है क्लास में, तो बच्चे खड़े हो जाते है ना, तो या तो सुप्रीम टीचर आता है, तो भी कितना निरहंकारी कहेगा खड़े नहीं रहो। बाकी ये जरूर बाबा कहते थे कि बच्चे समय पर आओ, टीचर आ जाए और उसके बाद स्टूडेंट्स आए, तो ये तो ठीक नहीं है। तो ये जरूर कहते हैं, लौकिक में टीचर कुछ, कोई बच्चा गलती करता था तो रूलर से उसको हाथ पर पीटते थे। बाबा कहते, ये भी बाबा नहीं करेंगे, हर एक को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। बस ज्ञान और योग, इसको बुद्धि में धारण करो। फिर बाबा ने ये भी पूछा है, ज्ञान बड़ा या योग बड़ा, किसको आगे रखेंगे, ज्ञान को या योग को, हाँ योग को या ज्ञान को? वास्तव में ओतप्रोत है। ज्ञान के बिना योग भी कैसे लगेगा, और योग नहीं होगा तो ज्ञान भी पूरा बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि सोने का बर्तन चाहिए बुद्धि का। तो भिन्न भिन्न रूप से बाबा हम बच्चों का उत्थान करते हैं। आज तो बाबा ने ये भी कह दिया, कुछ भी मांगो नहीं, भगवान से तो नहीं मांगो लेकिन मनुष्यों से भी नहीं मांगो। क्यों मांगो, मांगने की जरूरत ही नहीं है। धन भी की सेवा के लिए बाबा कहते धन भी क्यों मांगो, हर एक अपना अपना भाग्य बनाएगा, उसको खुद बुद्धि में आना चाहिए मुझे बीज बोना है, बाबा की सेवा करनी है तो धन से सहयोग देना है, क्योंकि परिवार है, परिवार में ही जो परिवार के सदस्य होते वही तो मदद करते ना घर चलाने लिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो भी धन भी नहीं मांगो, मांगने से मरना भला। आज तो बाबा ने यहाँ तक कह दिया कुछ भी मांगो नहीं। तो आज बाबा हमको इतना ऊंचा उठाते तो क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बाबा सब समझाते। तो सुनते बाबा के महावाक्य आज 12/11/2025 है। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर्विस के क्षेत्र में रहते हैं तो कई बार आदत वो होती है, तो बाबा कहते हैं ये आदत तुम्हारे में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उत्तर, कौन सी आदत, मांगने की आदत। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि की भी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते हो, मांगने से मरना भला। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वो बोएंगे, जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा वो जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना, तुम सर्विस करो अपने आप। हाँ, बाबा कहते हैं तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते, भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। हाँ, बाबा अपने आप हुंडी सकारेगा, अपने आप बाबा दिलाएगा, इसीलिए तुम नहीं मांगो। बस बाबा को याद करो, दिल से सेवा करो तो बाबा अपने आप भंडारा भरपूर कर देगा। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हाँ, तो गीत में शुक्रिया है, तो बाबा ने इस पर शुरू किया मुरली। ओम शांति। ये बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप टीचर गुरु के लिए नहीं निकल सकता है, क्योंकि बच्चे जानते हैं यह खेल बना हुआ है। शुक्रिया आदि की तो बात ही नहीं है। हाँ, बाबा का एक कर्तव्य है, कितना निरंकारी बाबा ये कहते हैं, शुक्रिया आदि की तो बात ही नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार, ये बच्चे समझते हैं ड्रामा अनुसार कि ये क्यों शुक्रिया भी नहीं करने की जरूरत। ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, क्यों कहेंगे ड्रामा अनुसार, क्योंकि बाबा का ये कर्तव्य है, ये तो ड्रामा भी मूड है, तो इसमें शुक्रिया की क्या बात। बाबा कहते हैं ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, खेल अक्षर भी आता है, ये दोनों ही बातें कह सकते, ये खेल है ये ड्रामा है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारे बुद्धि में आ जाता है, गोया खेल बुद्धि में आ गया, ड्रामा बुद्धि में आ गया, तो बाबा कहते क्या तुम बन गए गोया, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन, तुम स्वदर्शन चक्रधारी आप ही बन जाते हो। जैसे ही खेल बुद्धि में आया, ड्रामा में बुद्धि में आया, तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी आप ही बन जाते हो। तीनों लोकों भी, तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सब बुद्धि में आ जाता है। ये भी जानते हो अब खेल पूरा होता है, बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों, तीनों लोकों, आदि मध्य अंत का सब राज समझाते हैं। हाँ, तीनों काल कहते हैं ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो काल समय को कहा जाता है, दोनों अर्थ है, एक काल माना मृत्यु, दूसरा काल माना समय। तो काल समय को कहा जाता है। ये सब बातें नोट करने बिगर याद नहीं रह सकती है। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो, ड्रामा के ड्यूरेशन को भी अभी तुम जानते हो कितनी अवधि है ड्रामा की, 5000 साल की, बाबा कहते वो भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है ज्ञान का नेत्र मिला, स्वदर्शन चक्रधारी बने, तीनों लोकों का ज्ञान मिला, बहुत कुछ बाबा ने दिया। तो ये बड़ी बात क्या है इसमें, सबसे बड़ी बात है इससे तुम आस्तिक बन जाते हो। सारा बेहद का या रचयिता रचना का ज्ञान पूरा मिल जाता है तो पक्के आस्तिक बन जाते हो। नहीं तो क्या थे, नास्तिक थे, और दूसरा क्या थे, निधन के थे। धनी धोनी का पता ही नहीं था, कौन है परमात्मा कुछ पता नहीं था, न खुद को जानते थे, तो जैसे धनी के बिगर थे। तो तुम तो निधन के थे। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है, स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है ना, ये भी नॉलेज है। ऊंच से ऊंच बाप ही ये नॉलेज देते हैं, ड्रामा अनुसार अपने समय पर ही उनको आकर के ये देना है, ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। सो तो जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं उनके मुख से ड्रामा शब्द निकलता है। अभी तुम जानते हो हम तो ऑर्फन्स थे, अनाथ थे ना, धनी धोनी का पता नहीं, निधन के माना जैसे अनाथ, ऑर्फन्स थे। अब बेहद का बाप धनी मिला है तो धन के बने हैं। पहले तुम बेहद के ऑर्फन्स थे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो। हाँ, ऐसा कोई सुख जो बाबा हमें देते हैं कोई लौकिक बाप नहीं दे सकता। ऐसा कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख दे सके, देता हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया ये सब भी तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु अब सब बुद्धि में तो है, फिर परंतु क्यों बाबा कहते हैं, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाए, इस धंधे में, ईश्वरीय धंधे में लग जाए, ये बाबा चाहते। समझ तो लिया है बच्चों ने, रचयिता को जान लिया, रचना को जान लिया, अब दूसरों को समझाए। हाँ, ये है बड़ी बात, यथार्थ रीति फिर समझाए, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाए। हाँ, सेवा करता रहे। हर एक के सर्कमस्टांस भी अपने अपने होते हैं, हर एक की परिस्थिति अपनी अपनी होती है, कोई नहीं समय नहीं निकाल सकते हैं, कोई के पास बहुत समय होता है, तो हर एक की परिस्थिति अपनी अपनी होती है। तो समझा भी वो सकेंगे, एक तो परिस्थिति अनुसार चलो समझाएंगे, दूसरा बाबा कहते हैं समझा भी वो सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। खुद बाबा की याद में रहेंगे तब उमंग भी आएगा, मैं औरों को समझाऊं, औरों को ये बातें सुनाऊं, जो मैंने पाया है वो दूसरों को दूं। तो समझा भी वो सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है, बाप है ही, बाबा ने बहुत बड़ा टाइटल दिया है खुद को, बाप है ही जौहरदार तलवार। क्या है बाबा? जौहरदार तलवार, क्योंकि बाबा की याद से हमारी ज्ञान तलवार भी जौहर भर लेती है ना, तो इसीलिए बाप है जौहरदार तलवार। और जौहर होता है ना तलवार में या चाकू में भी, धार अच्छी मजबूत होती है, बहुत शार्प होती है, तो चीजें जल्दी कटती है। तो बाप है ही जौहरदार तलवार, तो बच्चों को जौहर भरना है। कैसे भरेंगे? बाबा की याद से, योग बल से तुम विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से बल नहीं मिलता है। ज्ञान तो तलवार है, पर उस तलवार में जौहर चाहिए ना, तो बिना याद के वो जौहर उस तलवार में कैसे आएगा। तो भले ज्ञान से चलो सेवा भी की, लेकिन योग नहीं है तो बाबा कहते उसका असर नहीं होगा आपके ज्ञान का। तो योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। तो बच्चों को समझाया है ज्ञान क्या है, योग है बल, और ज्ञान क्या है, ज्ञान है सोर्स ऑफ इनकम। जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी कमाई होगी, उतने बाबा कहते ज्ञान रत्न इकट्ठे करेंगे तो वो सच्चे रत्न बन जाएंगे भविष्य में। तो नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, यानी कमाई का साधन। योग को बल कहा जाता है, तो रात दिन का फर्क हो गया ज्ञान और योग में। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा, योग नामी ग्रामी है, क्योंकि राजयोग का वर्णन गीता में है, तो नामी ग्रामी है योग। योग ही नामी ग्रामी है, योग अर्थात बाप की याद। तो बाप कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है, भगवान वाच मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ, गीता में मैं तुमको ये सहज ज्ञान सुनाता हूँ। 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ, उसमें सब आ जाता है। 84 के चक्र के ज्ञान में सब आ जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। ज्ञान और योग दोनों सेकंड का काम है, सेकंड का काम। बस हम आत्मा है, हमको बाप को याद करना है, पर इसमें मेहनत भी है। सेकंड का काम है तो भी बाबा कहते मेहनत तो है। याद की यात्रा में रहने से बाबा कहते हैं, याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति होती जाती है। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाए, एकदम अशरीरी अवस्था एक घंटे तक हो जाए तो बाबा कहते कितने पावन हो जाए। मनुष्य रात को कोई 6 घंटा कोई 8 घंटा नींद करते हैं, तो जैसे अशरीरी हो जाते हैं ना, पर उससे तो क्या होता है, शरीर को तो विश्राम मिलता है। गहरी नींद आने से शरीर को अच्छा विश्राम मिलता है। तो बाबा कहते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं, पर उस समय में कोई विकर्म नहीं होता है। हाँ, वो अच्छी, वो ठीक बात है कि विकर्म नहीं होता है, क्योंकि गहरी नींद में क्या विकर्म होगा। आत्मा थक कर सो जाती है, ऐसे भी नहीं, विकर्म होते नहीं है, पाप बनते नहीं है, लेकिन क्या नहीं होता है, बाबा कहते ऐसे भी नहीं कि कोई पाप विनाश होते हैं, पाप विनाश भी नहीं होते हैं। गहरी नींद में बस शरीर को आराम मिलता है, आत्मा को भी आराम मिलता है, पर ऐसे नहीं कि कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वो तो नींद है। विकर्म कोई होता नहीं है, तो न विकर्म होता है न विनाश होता है। नींद न करे तो पाप ही करते रहेंगे, है ना। नींद न करे तो फिर क्या होता है, पाप करते रहते हैं। तो नींद भी एक बचाव है, पाप से बचने का उपाय है नींद, है ना। क्या ये देखते ना हॉस्पिटल में, देखते हैं इतनी तड़प रहे हैं, बात मत पूछो। तो डॉक्टर क्या करता है, उनको नींद का इंजेक्शन दे देता है, हाँ, ताकि उसको नींद आ जाए। तो जैसे नींद आ जाती है, वो तड़पना जो दुख में, दर्द में, वो पीड़ा में, तो वो फिर कम हो जाता। तो इसलिए नींद में कोई पाप बनते नहीं है, लेकिन विकर्म विनाश भी तो नहीं होते हैं। तो बाबा कहते हैं नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है, नींद में अशरीरी नहीं बनना है। शरीर होते ध्यान पता है, हाँ, जागृत अवस्था है तो भी अशरीरी होना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप हैं। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी आत्मा, तो बाबा ही बताते कि आत्मा की महिमा, आत्मा शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। भक्ति मार्ग में थोड़ी ऐसे पता है, वो तो यही कहते आत्मा निर्लेप है बस। आत्मा की महिमा ऐसी कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप भी है, परमात्मा की भी महिमा गाते हैं, सत है, चैतन्य है, और केवल आनंद स्वरूप नहीं है, सुख शांति प्रेम आनंद सब का वो सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे, अब वो तो सागर है, सचित भी है, आनंद का सागर है, और बच्चे क्या है, आत्मा ही। फिर तुम कहेंगे हम मास्टर है, जो बाबा जिन गुणों का सागर है, मैं आत्मा उसमें मास्टर हूँ। बच्चे को मास्टर भी कहते हैं ना, मास्टर माना उसका छोटा बच्चा, तो वो सब अधिकारी मास्टर है। तो बाप युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, ऐसे भी नहीं कि चलो अगर नींद से विकर्म नहीं बनते हैं, तो ऐसे भी नहीं कि सारा दिन नींद करनी है सारा दिन नींद करते रहो मेरे कोई विकर्म नहीं होंगे। तो नींद भी तो सारा दिन नहीं करेंगे ना, फिर तो सुस्त कहलाएंगे, नींद ही करते रहेंगे। तो ऐसे भी नहीं सारा दिन नींद करनी है, नहीं, तुमको तो याद में रहे पापों का विनाश करना है। जितना हो सके बाप को याद करना है, ऐसे भी नहीं विकर्म विनाश करने हैं, बाबा को याद करना है, पर ऐसे भी नहीं कि बाबा हमारे ऊपर रहम करते, बाबा रहम करो, पर ये भी नहीं कहना है। तो ऐसे भी नहीं कि बाबा हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं, नहीं, ये उनका गायन है, रहम दिल बादशाह, रहम दिल बादशाह ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं खाली बाबा को कहो रहम करो, बाबा कहते अपने ऊपर रहम करो, श्रीमत पर चलो तो अपने ऊपर रहम करेंगे, श्रीमत पर चलो तो अपने आप को आशीर्वाद देंगे, मांगो नहीं। तो बाबा कहते हैं ये नहीं, ये उनका गायन है रहम दिल बादशाह, वो भी उनका पार्ट है। रहम आकर करते हैं ना, सब आत्माओं को घर ले जाते हैं, दुखों से छुड़ाते हैं, सबसे बड़ा रहम करते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना, यही उनका रहम है। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है, ये गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। भक्त लोग महिमा करते रहते हैं, तुम कृपालु हो, रहम दिल हो, ये हो वो हो, परंतु फिर वो महिमा गा करके फिर क्या करते, मुझ पर थोड़ा रहम करो, फिर भिखारी बन जा करके फिर मांगते हैं। बाबा कहते तुम महिमा तो करते हो, पर कोई फिर मांगते नहीं हो, अधिकारी बन के बाबा से गुण लेते हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है, ये गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाएंगे। बाबा को अंतिम दिनों में कोई गीत पसंद नहीं थे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साइलेंस बाबा को पसंद थी। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं, टीचर आता है तो उठकर खड़े होते हैं फिर बैठते हैं, और ये बाप कहते हैं मुझे तो पाठ मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है, ये मेरा पाठ है। तो तुम बच्चों को उठने की भी दरकार नहीं, खड़े होकर के बाबा के सामने बाबा आए और हम खड़े हो जाएं, बाबा कहते वो भी दरकार नहीं है। आत्मा को बैठ सुनना है, खड़े होके थोड़ी सुनेंगे, बैठ कर सुनना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है, बच्चों को कहेंगे, बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो, हाँ मैं आया हूँ, अरे उठो, हाँ देखो ये उठ रही है, पता नहीं जाना है। मुझे लगा पता नहीं बाबा ने कार उठ गई। ठीक, तो बच्चों को कहेंगे क्या कि तुम उठो, नहीं, वो तो भक्ति मार्ग में करते हैं, यहाँ नहीं। बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं, और ये बाबा उठकर खड़े हो जाते थे और बच्चों के आगे झुकते थे और नमस्ते करते थे। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूलर लगाएंगे, हाँ उनको रूलर लगाएंगे, या बाहर में खड़ा कर देंगे, तुम लेट आए हो अब बाहर खड़ा रहो, या दरवाजे के पास, या तो दीवार के कहेंगे पीछे मुड़ के देखो, तो मतलब थोड़ी सजा देंगे। तो बाबा कहते हैं या बाहर में खड़ा कर देंगे, इसलिए डर रहता है स्टूडेंट को कि टाइम पर पहुंचना है। यहाँ तो डर की बात नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है लेट आते रहो, हाँ फिर ये भी मर्यादा है, डिसिप्लिन है टीचर से पहले पहुंचना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो डर की बात नहीं, बाबा समझाते रहते हैं, मुरलियाँ तो मिलती रहती है, वो रेगुलर पढ़नी भी है, मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क भी पढ़े, क्लास में नहीं आए ना मुरली पढ़ी तो फिर एब्सेंट हो गए ना, मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पढ़े, नहीं तो एब्सेंट पड़ जाएगा, हाजिर नहीं है तो एब्सेंट। क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गुह्य गुह्य बातें रोज सुनाता हूँ, तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वो पॉइंट्स तो मिस हो जाएगी। ये है नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते, तुम्हारे चित्र देखकर भी चकित हो जाते हैं, देखते तो हमारे चित्र तो चकित हो जाते, कोई ऐसा बना भी न सके, कोई शास्त्रों में भी नहीं है इस प्रकार के चित्र जैसे हम लोगों के चित्र हैं, भगवान ने चित्र बनाए थे, ये बाबा ने बनवाए ना, त्रिमूर्ति गोला झाड़ लक्ष्मी नारायण भी, ये बाबा कहते हैं भगवान ने चित्र बनाए थे, तुम्हारी ये चित्रशाला है नई जो भगवान ने चित्र बनाए, तुम्हारी ये चित्रशाला है नई, ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ये सब बातें बैठेगी, कहेंगे ये तो ठीक है, जो भी मैं सुन रहा हूँ ये तो ठीक है, कल्प पहले भी हमने पढ़ा था, जरूर भगवान पढ़ाते हैं, हाँ ये ठीक है मानेंगे। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहले नंबर में है गीता, सब शास्त्रों की शिरोमणि है गीता, क्योंकि पहला धर्म ही ये है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है ही गीता। तो बाबा कहते क्योंकि पहला धर्म ही ये है, फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते हैं, ऐसे नहीं द्वापर शुरू हुआ तुरंत शास्त्र बनते हैं, काफी देर के बाद बनते हैं, और धर्म पिताएं आते हैं, तो जैसे पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर एक से दो, दो से चार हुए, जब धर्म की वृद्धि होते होते लाख डेढ़ हो जाते हैं तब उनके शास्त्र आदि बनते हैं, उनके भी आधा समय बाद ही बनते होंगे, ऐसे नहीं आया और तुरंत उसका शास्त्र बना, काफी समय के बाद बनते होंगे, तो हिसाब किया जाता है ना। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए अब ये बातें बाबा ने बताई, फिर बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं, ये है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो सबको बोलो, क्या बोलो, कि यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है जो और कोई सिखला न सके। वो वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, है ना, मैप निकालते हैं ना, वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें ये कहाँ दिखलाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, वो क्या पता, वो तो खाली नक्शा निकालेंगे कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला। वर्ल्ड तो एक ही है, दुनिया तो एक ही है, भारत में ही, बाबा कहते हैं भारत में ही राज्य करके गए हैं लक्ष्मी नारायण, अब नहीं है। ये बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि जिन लक्ष्मी नारायण की हम पूजा करते हैं ये भारत में ही राज्य करके गए हैं। वो तो कल्प की आयु ही लंबी लाखों वर्ष कह देते हैं। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। मीठे मीठे बच्चे हो ना, प्यारे बच्चे हो, तो जास्ती तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। बाप कहते हैं बस पावन बनना है और मुझे याद करना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते आए हो। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम गाया ना, तो कितने धक्के खाते आए हो। अब समझते हो धक्के खाते खाते कितने साल हो गए, कितने सालों से धक्के खा रहे थे, 2500 वर्ष, 2500 वर्ष, 2500 वर्ष धक्के खाए भक्ति मार्ग में, 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आया है फिर से राज्य भाग्य देने। तुमको यही याद है, पुरानी से नई और नई से पुरानी दुनिया जरूर बननी है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, अभी भारत पुराना है तो पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए के मालिक बनेंगे, नया भारत होगा तो नए भारत के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते हैं, क्या नहीं महिमा गाते, सोने की चिड़िया थी, हाँ जहाँ डाल डाल पे बसती थी, सोने की चिड़िया थी तो सब कुछ सोने का था, और फिर दूसरा तरफ क्या गीत गाते हैं, देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। तो बाबा कहते हैं हाँ, एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते हैं, फिर दूसरी तरफ बहुत ज्ञानी भी करते रहते हैं, वो भी तुम्हारे पास गीत है। हाँ, दोनों प्रकार के गीत है, महिमा के भी भारत के और ज्ञानी के भी। तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है, ये दोनों गीत भी सुनाने चाहिए ताकि लोगों को पता चले भारत कितना ऊंचा था और अभी क्या हो गया है। तुम बता सकते हो कहाँ राम राज्य और कहाँ ये पूरा रावण राज्य। बाप है गरीब निवास, गरीबों की ही बच्चियां मिलती है, साहूकारों को तो अपना नशा रहता है। हाँ, बाबा की बच्चियां जो बनती है, ऐसे नहीं कोई पदमपति बच्चों माँ बाप की बच्चियां होती है, साधारण ही होते हैं। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है, कल्प पहले जो आए होंगे वो ही आएंगे, फिक्रात की तो कोई बात ही नहीं है। शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती है, शिव बाबा को क्यों फिक्र होगा, उनको पता है सब निश्चित है। पर हाँ, दादा को फिक्रात होती है, कई प्रकार की फिक्रात होती है। तो बाबा ने दो प्रकार की फिक्रात बताई जो बाबा ब्रह्मा बाबा को होती है, कौन सी, एक तो हाँ अपना फिक्र है क्योंकि मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, हाँ ऊंचा देवता बनना है, फर्स्ट नंबर भी आना है, तो फिक्रात तो बाबा को रहेगी ना, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। दूसरा बच्चों की भी फिक्रात, क्या क्या पत्र आते हैं, कितने सेंटर्स पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, सब बाबा को लिखते थे ना, तो वो भी तो बाबा को फिक्रात होती थी। तो बाबा कहते हैं तो फिक्रात तो दादा को होगी, इनको अपना भी फिक्र है कि हमको नंबर वन पावन बनना है, इसमें है गुप्त पुरुषार्थ। तो ब्रह्मा बाबा गुप्त पुरुषार्थ करते थे, मुझे नंबर वन बनना है। चार्ट रखने से समझ में आता है इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाप हमेशा समझाते रहते हैं डायरी रखो, बहुत बच्चे लिखते भी हैं। चार्ट लिखने से सुधार बहुत अच्छा होता है, ये युक्ति बहुत अच्छी है चार्ट लिखने से, जिससे सुधार होता है। तो ये तो सबको करना चाहिए, डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना, लिखना है तो फिर ध्यान देकर बाबा को याद भी करेंगे, उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरियां कितनी लिखो करोड़ों बनती है, कितनी डायरियां शुरू से, सचमुच हमारे पास कितनी डायरियां हैं शुरू से, जैसे बाबा के बने लिखते रहे, कितनी डायरियां हैं, करोड़ों बनती है नोट आदि करने के लिए डायरियां। सबसे मुख्य बात तो ये है नोट करने की, ये कभी भूलना नहीं चाहिए कितना याद किया। हाँ बाबा कहते हैं ये डायरी में नोट करना है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए, उसी समय डायरी में लिखना चाहिए। रात को हिसाब किताब भी लिखना चाहिए कि कितना याद किया सारे दिन में, फिर कई घंटे घंटे का भी हिसाब लिखते हैं। फिर मालूम पड़ेगा ये तो हमको घाटा पड़ रहा है, कल का चार्ट तो बहुत अच्छा था, आज थोड़ा कम है तो जैसे घाटा हो गया, ये तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं। तो बाप रास्ता बताते हैं, अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे ना, आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भला। कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए, बच्चों को सख्त मना है। बाप कहते हैं ग्राम अनुसार जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया है वर्षा पाया है वो आप ही करेंगे। बाबा कहते हैं जो इशारे से समझे वो देवता, जो कहने से समझे वो मनुष्य, और जो कहने से भी न समझे बाबा डैश डैश कहते हैं, वो बताते नहीं। तो बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया है वर्षा पाया है वो आप ही करेंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं करेगा तो नहीं पाएगा, सीधी बात है। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना, भक्ति मार्ग में भी मिलता है, दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है, जिनको करना होगा वो आप ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं है। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे कराएगा, अपने आप टचिंग आएगी, हमको बाबा को मदद करना है, ये मेरे पास धन है मैं बाबा की भंडारी में दो। हाँ कई इतना गुप्त करते हैं, हाँ कहते हैं बस आप किसी को भी बताना नहीं, हाँ बाबा को गुप्त देते हैं। तो बाबा कहते हैं कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे कराएगा, मांगने की क्या दरकार है। बाबा तो कहते रहते हैं हुंडी भरती रहती है, बाबा की भंडारी भरती रहती है सर्विस के लिए। हम बच्चों को थोड़ी कहेंगे पैसा दो, बाबा भगवान अपने बच्चों को थोड़ी कहेंगे कि बाबा को पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती, जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वो करते रहेंगे। आपे ही कभी मांगना नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते हो। हम किसी से भी डोनेशन चंदा मांगते हो, भक्ति मार्ग में तो बहुत कुछ मांगते हैं। बाबा कहते हैं, तुम ये नहीं इकट्ठा कर सकते हो, ये तो सन्यासी लोग करते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं, उसका रिटर्न में एक जन्म लिए मिलता है। ये फिर है जन्म जन्मांतर के लिए, वो तो इनडायरेक्ट हुआ ना भक्ति मार्ग में। यहाँ तो भगवान डायरेक्ट आए हैं, तो यहाँ तो बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो डायरेक्ट करने से तो कितना मिलेगा। एक पैसा दो 10 लाख देगा, है ना, ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, और कई बहुत सुंदर अपना अनुभव सुनाते हैं। मैंने बाबा की भंडारी में डाला और फिर बाबा ने इतना दिया जो कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि हम बाबा की भंडारी में डाला। बहुत अनुभव बताते हैं। तो बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं, उसका रिटर्न में एक जन्म लिए मिलता है। ये फिर है जन्म जन्मांतर के लिए, तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। कहाँ खाली एक जन्म के लिए और कहाँ जन्म जन्मांतर के लिए, किसमें ज्यादा फायदा है। तो जन्म जन्मांतर के लिए सबको दे देना अच्छा है ना। इनका तो नाम भोला भंडारी है, शिव को क्या कहते हैं, शिव भोला भंडारी। इनका तो नाम भोला भंडारी है, तू पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर, शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। काल भी दूर जाएगा तो कंटक भी दूर जाएगा, विघ्न भी दूर जाएंगे। वहां कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं, थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता है, थोड़ा सा कुछ हुआ तो मौत याद आ जाता है, ख्याल ही नहीं। वहां तो कभी ऐसा ख्याल नहीं आएगा कि मर जाऊंगा। तुम अमरपुरी में चलते हो, ये छीछी मृत्यु लोक है। भारत ही अमर लोक था, अब मृत्यु लोक है। तुम्हारा आधा कल्प बहुत छीछी पास हुआ है। बाबा ने कहा, धक्के भी खाए आधा कल्प, बहुत छीछी पास हुआ है, बहुत अच्छा पास नहीं हुआ है। नीचे गिरते आए हो, जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, सब देखा है बाबा ने भक्ति मार्ग का। चारों तरफ घूमा हुआ है, गोरे से सांवला बनाए। बाबा लौकिक में क्या था और फिर सत्युग में क्या था और अभी क्या बनाए, गोरे से सांवला बनाए। गांव में रहने वाला था साकार में बाबा, जब उनका जन्म बाबा का हैदराबाद के भी एक गांव में हुआ था, और गांव में इनके पिता स्कूल मास्टर थे। तो बताओ, गांव का स्कूल और उसमें स्कूल मास्टर, तो कोई बहुत ज्यादा तो धनवान तो नहीं थे। तो गांव में रहने वाला था, वास्तव में बाबा कहते ये सारा भारत गांव है। पहले तो ये गांव ही था ना, धीरे धीरे बड़े बड़े शहर बनते गए। भारत तो ऐसा, तो सारा भारत ही गांव है। तुम तो गांव के छोरे हो, सब गांव के छोरे। हाँ, बाबा के कई बच्चे गांव से आते हैं, और गांव में जो सचमुच हम देखते हैं, इतनी भावना होती है जो शहरों में भी नहीं होती। तुम गांव के छोरे हो, अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे मत समझना, गांव के छोरे हो, बाबा कहते हैं, कईयों को क्या अभिमान होता है, ऐसे मत समझना हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। कई मुंबई से आते हैं ना, तो मुंबई तो बाबा कहते थे नर डेसावर, बहुत धन है वहाँ, कमर्शियल सिटी है बॉम्बे, जो भी जाएगा खूब धन कमा सकता है बॉम्बे में। फिर बाबा ये भी कहते थे मायावी नगरी है मुंबई, मायावी नगरी है। तो जब मैं ये सुनती थी ना, तो मैं भी मुंबई की हूँ, तो मैं मुरली में जब ये सुनती थी मायावी नगरी है ये है, तो मैंने जब सरेंडर हुई, मैंने यही कहा दादी को, दादी मुझे मुंबई में मत रखो, मैं मुंबई में सेंटर पर रहना शुरू किया था, दादी मुझे कहीं और भेजो। तो देखो मुंबई में नहीं रहना, तो इसीलिए बाबा देखो क्या कहते हैं, ऐसे मत समझना हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं, बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है, क्या बड़ी बात है मुंबई, कुछ भी नहीं है। हाँ बड़े बड़े मकान है, बिल्डिंग्स है, बाबा कहते क्या बड़ी बात है, कुछ भी नहीं है, एक पत्थर भी नहीं, स्वर्ग की भेंट में मुंबई एक पत्थर भी नहीं। हम गांव के छोरे छोरे निधन के बन गए हैं, अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। नाम ही है स्वर्ग, कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते हैं, सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था, तो पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं, द्वापर में आते ही पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, कितना साहूकार था भारत। अभी तो भारत गांव है, सतयुग में बहुत माला माल था, ये बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते, तुम कहेंगे, क्योंकि अभी हम जानते हैं तो हम क्या कहेंगे, तुम कहेंगे कल तो हम बादशाह थे आज फकीर है, कल बादशाह थे राव थे अभी रंक है आज फकीर है, फिर विश्व के मालिक बनेंगे। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए, बाबा कहते बाबा आपको शुक्रिया नहीं करो, अपने भाग्य पर शुक्रिया करो, हम पद्मा पदम भाग्यशाली है। कई जो वो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, थोड़ा नशा चढ़ाते हैं तो कहते पीठ पर हाथ रखो और कहो वाह रे मैं, वही रखो पीठ पर, बाबा कहते हैं हाँ वाह रे मैं, वाह रे मैं, क्यों नहीं आ, नशा आता है ना, बाबा ने हमें क्या से क्या बनाया। तो तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए, हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है, दिन भर ये अभ्यास करना, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती जाए। दूसरा ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है, ये सब प्रैक्टिकल बातें करनी है। वरदान रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है, रूहानियत, इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत, रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो, रूहानियत माना आत्मा की स्थिति, तो ये रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो, इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्ति युक्त बनकर हर कर्म में युक्ति युक्त बन हर कर्म में यूज होने की बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो, युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने की बजाय, माना ढीले नहीं बनना है, लूज होने की बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त है वही जीवन मुक्त है। कौन है जीवन मुक्त? जो तीनों ही मनसा वाचा कर्मणा तीनों में रूहानियत व युक्ति युक्त है वही जीवन मुक्त है। स्लोगन, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ के अंतर्गत जो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली है उनमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़ ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। प्रभाव नहीं डाल सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। डबल विदेशी भाई बहने सब बैठे रहेंगे, आज का पूरे दिन का प्रोग्राम आपको सुनाएंगे। सब विदेशी भाई बहने बैठे रहना और